नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। पिछले कई सालों से चल रहा इजराइल हमास संघर्ष अब युद्ध का रूप ले चुका है। इसके कारण दोनों पक्षों को काफी नुकसान हुआ है। इसने व्यापार को भी प्रभावित किया है। भारत और इजराइल के बीच सामान की आपूर्ति पर भी असर पड़ा है। इजराइल के कृषि समुदाय और संबंधित उद्योगों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है। भारत इजराइल का एक प्रमुख व्यापारिक भागीदार है, जो मुख्य रूप से गैर कृषि उत्पादों का कारोबार करता है। हालांकि मौजूदा संघर्ष से इसके प्रभावित होने की संभावना कम है। पिछले दशक में इजराइल की जनसंख्या में प्रतिवर्ष लगभग दोगुने की वृद्धि हुई है। हालांकि उसके जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान सन 2020 में 1.1% से घटकर सन 2021 में कुल रोजगार का 0.9% हो गया। इजराइल की अर्थव्यवस्था अनाज और तिलहन जैसी प्रमुख कृषि वस्तुओं के लिए आयात पर बहुत अधिक निर्भर करती है। एयर इंडिया की किफायती एयरलाइन एयर इंडिया एक्सप्रेस के प्रबंध निदेशक आलोक सिंह ने कहा है कि एयरलाइन कीमतों को लेकर संवेदनशील ग्राहकों और सैर सपाटा करने वाले यात्रियों के मार्गों पर ध्यान केंद्रित करेगी। सिंह ने कहा कि एयर इंडिया एक्सप्रेस शुरुआत में पूरे देश में अपनी क्षमता विस्तार पर विचार नहीं कर रही है और इसके बजाय सबसे पहले मौजूदा मार्गों पर अपनी उपस्थिति मजबूत करेगी। एयर इंडिया एक्सप्रेस किफायती घरेलू एयरलाइन एयर एशिया इंडिया का खुद में विलय करने की प्रक्रिया में है। कंपनी ने पिछले सप्ताह अपनी नई ब्रांड पहचान का भी अनावरण किया था। टाटा समूह के स्वामित्व वाले एयर इंडिया समूह में एयर इंडिया एक्सप्रेस, एआईएक्स कनेक्ट और विस्तार हैं। टाटा समूह भी अपने एयरलाइन कारोबार को एकीकृत करने की प्रक्रिया में है। सेबी ने नियामक मानदंडों का उल्लंघन करने पर शेयर बाजार सलाहकार फर्म वेल्थहिट ग्लोबल के मालिक मोहित मंगनानी को शेयर बाजार से 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। नियामक ने उन पर 30 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सेबी ने इसके अलावा मोहित मंगनानी को 5 साल की अवधि के लिए किसी भी सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी या किसी सेबी में पंजीकृत मध्यस्थ में निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के रूप में काम करने से प्रतिबंधित कर दिया है। सेबी ने मंगनानी को नियामक के स्कोर्स मंच पर मिली सभी शिकायतों का 3 महीनों के अंदर निपटान करने का निर्देश भी दिया है। सेबी ने मंगनानी के खिलाफ एक पक्षीय आदेश पारित किया और बाद में उन्होंने प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण से संपर्क किया, जिसने मामले को सेबी को वापस भेज एक नया आदेश पारित करने का निर्देश दिया। सिक्किम उच्च न्यायालय ने डेल्टा कॉर्प के खिलाफ करीब 628 करोड़ रुपए के जीएसटी मांग के आदेश पर रोक लगा दी है। कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि सरकार ने अभी तक कंपनी के खिलाफ करीब 23,000 करोड़ रुपए की कुल जीएसटी मांग की है। इसमें डेल्टा कॉर्प समूह के कैसिनो और ऑनलाइन गेमिंग व्यवसाय के लिए भुगतान नहीं किए गए कर शामिल हैं। कंपनी ने बताया कि जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय हैदराबाद ने सन 2022 सितंबर को कंपनी के खिलाफ 3 मांग नोटिस जारी किए, जिसमें सिक्किम स्थित कैसिनो डेल्टिन डेंजोंग के संबंध में डेल्टा कॉर्प लिमिटेड द्वारा करों का पूर्ण भुगतान न करने के लिए 628 करोड़ रुपए से अधिक की मांग भी शामिल है। वैश्विक बाजारों के कमजोर रुझानों के बीच घरेलू बाजार सेंसेक्स और निफ्टी ने सोमवार को शुरुआती सत्र में लगभग स्थिर कारोबार किया। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 56.3 अंक बढ़कर 65,453.92 पर पहुंच गया। निफ्टी 14.2 अंक चढ़कर 19,556.85 पर रहा। दोनों सूचकांकों को बाद में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा और वो मामूली बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स की कंपनियों में आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस, पावर ग्रिड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अल्ट्राटेक सीमेंट, नेस्ले, बजाज फिनसर्व और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर लाभ में रहे। कोटक महिंद्रा बैंक, टाटा स्टील, लार्सन एंड टूब्रो, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जेएसडब्ल्यू स्टील, टेक महिंद्रा, इंडसइंड बैंक और टाइटन के शेयर नुकसान में रहे। वित्त मंत्रालय घाटे में चल रही सार्वजनिक क्षेत्र की 3 साधारण बीमा कंपनियों में चालू वित्त वर्ष की 4थी तिमाही में पूंजी डालने पर विचार करेगा। इन कंपनियों में पूंजी उनके चालू वित्त वर्ष के पहले 9 माह के प्रदर्शन के आधार पर डाली जाएगी। सूत्रों ने बताया कि वित्त मंत्रालय ने पिछले साल 3 कंपनियों नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को कारोबार के बजाय मुनाफे पर ध्यान देने और सिर्फ अच्छे प्रस्तावों को स्वीकार करने के लिए कहा था। सूत्रों ने बताया कि वित्तीय समीक्षा से पता चलेगा कि इस पुनर्गठन से कंपनियों के मुनाफे के आंकड़े और सॉल्वेंसी मार्जिन पर क्या प्रभाव पड़ा है। सॉल्वेंसी मार्जिन वो अतिरिक्त पूंजी है जिसे कंपनियों को संभावित दावा राशि के अतिरिक्त अपने पास रखनी होती है। ये विषम परिस्थितियों में वित्तीय सुरक्षा के रूप में कार्य करता है, जिससे कंपनी को सभी दावों का निपटान करने में मदद मिलती है। भारत में डिजिटल बदलाव और उन्नत प्रौद्योगिकियों का विकास पूरी गति से हो रहा है, लेकिन साइबर विशेषज्ञों ने डेटा की सुरक्षा के बारे में चिंता व्यक्त की है, जिसे देश को अपने पड़ोस के विरोधियों और बढ़ते घोटालों को देखते हुए प्रबंधित करना होगा। सिंगापुर साइबर वीक सन 2023 के मौके पर विशेषज्ञों ने कहा कि भारतीय प्रौद्योगिकी विदों और व्यावसायिक अधिकारियों को प्रौद्योगिकी संचालित खतरों से निपटने के लिए सहयोग करते हुए एक व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना चाहिए। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।